समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। नमस्कार, कार्यक्रम परिक्रमा में आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार और चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। खेल के मैदान की हलचल भी होगी और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर, और इसके अलावा बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी जिनकी है आज पुण्यतिथि, जयंती या फिर जन्मदिन। और आज के हमारे सेगमेंट डेटलाइन में आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की, जो कि आपकी हमारी सबकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है। तमाम तरह की बीमारियों से लड़ने में, उन्हें ठीक करने में क्या उसकी भूमिका है और किस तरह से इंडिया में इसका वर्क फोर्स बढ़ता जा रहा है, इन सब पर आज हम बात करेंगे। आज के इस अंक में मैं हूं जागृति शर्मा और मेरे साथ हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो जागृति, हेलो एंड गुड डे एवरीबॉडी। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे ऑफ कोर्स इज माय को-होस्ट जागृति, एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के लिए संकल्प पत्र जारी किया। राज्य में सरकार बनने के 6 महीने के अंदर समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा।
गवर्नमेंट सेज इट सक्सेसफुली मेट द पीक डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री एमिड वेस्ट एशिया क्राइसिस।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली।
जस्टिस यशवंत वर्मा सबमिट्स रेजिग्नेशन एज इलाहाबाद हाई कोर्ट जज अमिड इम्पीचमेंट प्रोसेस।
भारत और अमरीका पैक्स सिलिका के अंतर्गत सहयोग बढ़ाने और व्यापक आर्थिक तथा तकनीकी संबंधों को विस्तार देने पर सहमत हुए।
एंड इन IPL क्रिकेट, राजस्थान रॉयल्स टू फेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इन गुवाहाटी दिस इवनिंग। And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about World Homeopathy Day. And Jagriti, today we come together to observe an important day in the field of alternative medicine, World Homeopathy Day. And this day is celebrated every year to mark the birth anniversary of Dr. Samuel Hahnemann, the visionary founder of homeopathy, who introduced this gentle and holistic system of healing.
बिल्कुल, विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 की हम बात करेंगे, और इससे पहले आपको बताएं कि इस वर्ष इस दिवस का विषय है सतत स्वास्थ्य के लिए होम्योपैथी। ये दिवस न्यूनतम दुष्प्रभावों के साथ दीर्घकालिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में होम्योपैथी की भूमिका को उजागर करता है। और होम्योपैथी केवल बीमारी का नहीं बल्कि पूरे व्यक्ति का इलाज करने पर केंद्रित है। ये प्राकृतिक उपचार तथा शरीर के भीतर संतुलन बनाए रखने पर ज्यादा जोर देती है।
And listeners, did you know that India has one of the largest homeopathic workforces in the world? Did you know that, Jagriti?
बिल्कुल सही, भारत में लगभग 3,45,000 रजिस्टर्ड होम्योपैथी डॉक्टर हैं। साथ ही इस क्षेत्र को समर्पित 8,593 डिस्पेंसरी, 277 शिक्षण संस्थान और 34 अनुसंधान केंद्र भी हैं।
So, Jagriti, let's know more about homeopathy. Well, homeopathy was first introduced in India in 1810 by German missionaries who began distributing these medicines. And since then, it has grown tremendously and continues to be an integral part of India's healthcare system. And around 1810, John Martin Honigberger, a disciple of Samuel Hahnemann, began practicing in India. His successful treatment of Maharaja Ranjit Singh in 1839 significantly boosted his acceptance among both elites and the general population.
और अगर हम होम्योपैथी की शाब्दिक रचना की बात करें तो होम्योपैथी दो ग्रीक शब्दों से बना है, होमोइस जिसका अर्थ है समान यानी सिमिलर, और पैथोस जिसका अर्थ है पीड़ा यानी कि सफरिंग। और सीधे शब्दों में अगर कहें तो ये चिकित्सा एक ऐसी प्रणाली है जिसमें बीमारियों का इलाज उन औषधियों से किया जाता है जो रोगी द्वारा अनुभव किए जा रहे लक्षणों जैसा ही प्रभाव उत्पन्न करती है। होम्योपैथी दो मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है समान ही समान का इलाज करता है, लाइक क्योर्स लाइक, यानी जिसे कहते हैं ना कि लोहा ही लोहे को काटता है।
Absolutely. And this is a very important benefit of taking homeopathic medicines, Jagriti, if I may add here, is that they leave no side effects, unlike your allopathic medicines. Homeopathic medicines have no side effects, isn't it?
बिल्कुल, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये प्राकृतिक चिकित्सा की ही एक पैथी है। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे तो इसका अर्थ यही हुआ कि ऐसा कोई पदार्थ जो किसी स्वस्थ व्यक्ति में कुछ लक्षण उत्पन्न कर सकता है, यदि उसे विशेष रूप से तैयार किया जाए तो वो किसी अस्वस्थ व्यक्ति में उन्हीं जैसे लक्षणों के इलाज में सहायता कर सकता है। और होम्योपैथी का ये सबसे अच्छा और जिसे कहते हैं कि बेस्ट एडवांटेज है कि आप उसे किसी अगर बीमारी के लिए ले रहे हैं तो वो शरीर के किसी अन्य हिस्से में कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं करती है। स्लो है लेकिन वो आपको जरूर क्योर करती
Absolutely.
है।
The results may be slow, but the treatment is definitely worth it, isn't it? So the second principle is the law of minimum dose, and this focuses on using highly diluted remedies to gently stimulate the body's natural healing process while also reducing the chances of side effects like we were just talking about a little earlier.
जी बिल्कुल। और होम्योपैथी का एक और दिलचस्प पहलू यानी कि इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसकी जो प्रोसेस है बनाने की, जो उसकी मेकिंग प्रोसेस है, ये प्राकृतिक स्रोतों जैसे पौधे हैं, खनिज हैं, इनसे बनाई जाती है और इन्हें डाइल्यूट करके और एक विशेष हिलाने की प्रक्रिया इसमें की जाती है जिसे कहते हैं सक्शन। इसके बाद में ये होम्योपैथी की मेडिसिन तैयार की जाती है।
And these medicines are commonly available as tablets, globules, or liquid drops. But what really sets homeopathy apart is this personalized approach. Treatment is based not just on the disease, but on the patient's overall physical and mental condition.
और अब जब हम होम्योपैथी के बारे में जान चुके हैं तो आइए अब जान लेते हैं कि भारत में इस क्षेत्र में किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर होम्योपैथी से जुड़े हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो लगभग 2.25 लाख रजिस्टर्ड होम्योपैथी प्रैक्टिशनर्स के साथ भारत दुनिया में होम्योपैथी से जुड़े सबसे बड़े वर्कफोर्स में से एक है। पिछली एक सदी में ये चिकित्सा पद्धति न केवल टिकी रही है बल्कि देश की प्राकृतिक और निवारक स्वास्थ्य देखभाल की समृद्ध परंपराओं के साथ पूरी तरह से घुल मिल गई है। हाल के वर्षों में लगातार इसे मिल रही स्वीकृति को मजबूत संस्थागत सहयोग से और कहीं ज्यादा बल मिला है।
And the establishment of the Ministry of Ayush in 2014 marked a pivotal shift, bringing renewed policy focus on homeopathy through structured interventions and research, standardization and global outreach. And these efforts have helped transform homeopathy from a traditionally practiced therapy into a well-recognized policy-driven component of India's healthcare system.
बिल्कुल, योग है, नेचुरोपैथी है, सिद्ध है, बहुत तमाम सारी ऐसी पैथी हैं। उनके साथ में आयुष मंत्रालय ने होम्योपैथी के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया है। हाल के वर्षों में वैज्ञानिक प्रमाणन और रिसर्च के जरिए होम्योपैथी को ज्यादा प्रमाण आधारित बनाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। भारत में अभी लगभग 34 विशेष होम्योपैथिक रिसर्च सेंटर हैं जो इस क्षेत्र में व्यवस्थित अध्ययन और इनोवेशन के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं। और इन प्रयासों की अगुवाई आयुष मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग और केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद जैसे प्रमुख संस्थान कर रहे हैं।
एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन एडवांसिंग क्लिनिकल रिसर्च एंड एंश्योरिंग दैट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स आर बैक्ड बाय साइंटिफिक एविडेंस एंड दे ऑल्सो वर्क ऑन ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज ब्रिंगिंग टुगेदर ट्रेडिशनल नॉलेज एंड मॉडर्न साइंस एंड दिस ग्रोइंग infrastructure reflects India's commitment to strengthening homeopathy as a reliable and research-driven healthcare system. Indeed, with continued innovation and scientific support, homeopathy is steadily evolving to meet the healthcare needs of today.
आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आज होम्योपैथी दिवस पर कहा कि होम्योपैथी केवल एक विकल्प नहीं है बल्कि ये करुणा और प्रमाण पर आधारित एक विज्ञान है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर एक सभा का आयोजन किया गया। इसे संबोधित करते हुए श्री जाधव ने कहा कि होम्योपैथी की लोकप्रियता में लगातार वृद्धि हो रही है क्योंकि लोग अब होम्योपैथी आधारित उपचार को प्राथमिकता दे रहे हैं। उन्होंने देशवासियों से एक सुदृढ़ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया। श्री जाधव ने कहा कि होम्योपैथी भारत के स्वास्थ्य मॉडल में एक सतत स्वास्थ्य प्रणाली के रूप में अपनी जगह बना रही है।
डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन की जयंती मना रहे हैं तो यहाँ उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। यह दिन केवल एक चिकित्सा पद्धति का उत्सव नहीं है, बल्कि यह हमारे अब तक के सफर पर विचार करने और भविष्य की दिशा को उद्देश्यपूर्ण दृष्टि से देखने का भी एक अवसर है। समय के साथ होम्योपैथी ने निरंतर अपनी मजबूती बढ़ाई है और हमारे सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र में एक सार्थक स्थान बनाया है। आज भारत में होम्योपैथी का एक सशक्त और निरंतर विस्तार करता हुआ कार्यबल मौजूद है, जिसमें लगभग 3.45 लाख पंजीकृत चिकित्सक शामिल है।
Yes, and now let's explore some remarkable success stories of homeopathy in managing epidemics across the world. And much of this work has been led by the Central Council for Research in Homeopathy, or the CCRH, which has implemented homeopathic interventions both in India and internationally. And let's take a closer look. We begin in India, especially Uttar Pradesh, with Japanese encephalitis. An acute encephalitis syndrome had been a major public health concern, and in large-scale effort, the remedy Belladonna 200 was distributed to over 3 lakh people across 96 villages, and the result was were encouraging. And not only did it help in preventing cases, but when combined with standard medical care, it also improved patient outcomes significantly.
और अगर बात करें केरल की, तो यहां 2007 में जब चिकनगुनिया का प्रकोप काफी ज्यादा फैला, तब लगभग 19,750 लोगों को बचाव के तौर पर ब्रायोनिया अल्बा 30C दी गई। जी हां, और इसका असर भी काफी देखने लायक था। बीमारी फैलने की दर में काफी कमी आई। लगभग 84.5% मरीज बुखार से जल्दी ठीक हुए और लगभग 90% लोगों को पुराने गठिया के लक्षणों में सुधार दिखाई दिया।
And now let's look beyond India to Cuba, where homeopathy was used in dengue management, and around 25,000 patients were treated with a homeopathic combination, and the outcome showed significant clinical improvement along with reduced hospital stays, highlighting the potential of homeopathy in large-scale epidemic responses. So to conclude our discussion today, Jagrit and homeopathy. Homeopathy in India reflects a unique blend of tradition and modern advancement, where time-honored healing principles align seamlessly with contemporary science. And rooted in a rich history of holistic care, homeopathy is now undergoing meaningful transformation. And this transformation has been driven by scientific research, stronger regulations, and an expanding network of educational institutions. And as a result, homeopathy is becoming more credible and increasingly relevant in today's healthcare landscape. So on this day, let us recognize the contributions of homeopathy in providing safe, affordable, and sustainable healthcare. And let us also appreciate the efforts of all homeopathic practitioners who work tirelessly to improve lives.
बिल्कुल, और इस तमाम बदलाव की अगुवाई कर रहा है केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग। होम्योपैथी को सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों में शामिल किया जा रहा है और ये महामारियों से निपटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे पता चलता है कि ये प्रणाली आधुनिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को कैसे ढाल रही है, और भविष्य को देखते हुए भारत में होम्योपैथी एक अधिक समावेशी, सुलभ और एकीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सहयोग देने के लिए बेहतर स्थिति में है। तो कह सकते हैं कि एक सफर जो परंपरा के साथ शुरू हुआ, अब नवाचार के साथ और बेहतर रूप से जारी है। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
Yes, Jagriti, and we start off with a story from Champaran. And today marks the 108th anniversary of the Champaran Satyagraha, a defining moment in India's freedom struggle led by Mahatma Gandhi. And on this day, 1917, the Champaran district of Bihar, the movement was launched to address the grievances of indigo farmers who were compelled by the British planters to cultivate indigo under the oppressive Tin Kathia system. And it also marked Mahatma Gandhi's first experiment with Satyagraha in the country. We have a report.
In response to the persistent efforts of local farmer Rajkumar Shukla, Mahatma Gandhi visited the region and undertook a detailed inquiry into the plight of the peasants. Defying British orders to leave, he mobilized farmers through non-violent resistance and brought national attention to their suffering. The movement eventually led to the formation of an inquiry committee with Gandhiji as a member, and by 1918, the movement successfully forced the abolition of forced indigo system. The Champaran Satyagraha not only secured justice for farmers, but also marked the rise of Gandhi as a mass leader, laying the foundation for India's larger freedom movement. This is Vishnu P.S. for Akashwani News, Delhi.
और अब चलते हैं गोवा की ओर, जहां पर गोवा स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय और सागरी अनुसंधान केंद्र NCPOR ने 2 से 6 अप्रैल के बीच अपना 26वां स्थापना दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया. आइए जानते हैं इस मौके पर क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए.
NCPOR ने 26वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक विशेष समारोह आयोजित किया, जिसमें भारत के ध्रुवीय और सागरीय अनुसंधान में अग्रणी भूमिका को उजागर किया गया. 2 अप्रैल को पृथ्वी सभागृह के कार्यक्रम की शुरुआत हुई. इस अवसर पर प्राचार्य शेखर सी मांडे ने विकसित भारत में विज्ञान की भूमिका विषय पर व्याख्यान दिया. उन्होंने कहा कि नवाचार और अनुसंधान में निवेश राष्ट्र निर्माण के लिए बेहद जरूरी है. 6 अप्रैल को आयोजित मुख्य समारोह में संस्थापक डॉक्टर प्रेमचंद पांडे, पूर्व निदेशक डॉक्टर रसीद रविन्द्र और डॉक्टर एस राजन सहित कई प्रमुख वैज्ञानिक मौजूद रहे. NCPOR के निदेशक डॉक्टर थम्बन मिलोत ने बताया कि संस्थान ने अंटार्कटिका से शुरू होकर अब आर्कटिक, हिमालय और अन्य महासागरों तक अपने शोध कार्य का विस्तार किया है. इस दौरान पोलर फेस्ट, साइंस ऑन स्पीयर्स शो और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें 600 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया. कार्यक्रम में NCPOR पुरस्कार भी प्रदान किए गए. पिछले 26 वर्षों में NCPOR ने भारत को ध्रुवीय और सागरिक अनुसंधान के क्षेत्र में वैश्विक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. परिक्रमा के लिए आकाशवाणी पणजी से निखिल उपाध्याय.
Yes, and April 14th is Baisakh 1 as per Nepali calendar for the year 2083 Vikram Samvat, and is a national holiday in Nepal to mark the arrival of New Year. Across Nepal, the New Year is celebrated as festivity, especially in Bhaktapur of Kathmandu Valley. Biscuit Jatra marks welcoming the New Year by blessing of Vairav, and here's a report from a correspondent in Nepal.
Bhaktapur district of Kathmandu Valley started early celebrations to welcome the Nepali New Year with music and festivities. Citizens of Bhaktapur celebrate the arrival of New Year by organizing a 9-day-long Biscuit Jatra. Newar community people perform dance in the traditional attire on traditional music to dhime, madal, jhal, dampu, turahi and panche baja. In the Jatra, a 3-story chariot made of wood in the pagoda style carries a statue of Lord Bhairav. As part of the festival, the chariot is pushed and pulled by 2 groups of locals around the human settlements through different streets and localities with statue of Bhairavnath and Betal. Biscuit Jatra started during Malla dynasty, which formally starts 4 days before the beginning of the Nepali New Year. Shweta Singh for Parikrama, Kathmandu.
और अब लिए चलते हैं आपको जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में, जहां पर पूरे देश भर से लोग कश्मीर घाटी का दौरा करने के लिए यात्राएं कर रहे हैं. इस क्षेत्र के विभिन्न प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को देखने और यहां के शांत वातावरण तथा बर्फ से ढके इलाकों का अनुभव करने के लिए यात्री लगातार पहुंच रहे हैं. श्रीनगर से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट सुनते हैं.
Tourists are moving and traveling across Kashmir region while enjoying the beauty, serene environment and above all safe and secure atmosphere across the valley. Talking to Parikrama, some women visitors expressed their joy and unique experiences while being in Kashmir, inviting fellow countrymen to visit Kashmir.
I'm Sita Dayanandan. It's a beautiful place. It's been in my bucket list for a long time. So far, so good. People are very friendly and helpful. It's a place worth visiting. There are a lot of, I think most of your tourists are from Kerala, does say that definitely it's a place worth visiting.
My name is Amina, Kerala, Kochi. Last 9 years, I started my women's only travel group, was named Mal Travel Mate. Kashmir, every year, 7 times minimum, I'm visiting. The best season, Kashmir, because the tulip, yearly, 20 days only available, the tulips.
I'm here for the second time. It's just like mini Switzerland.
Gita Nair. I'm a classical dancer. My life dream is this, one time come to Kashmir. Like
like it and I am very thankful.
कश्मीर से बहुत रगा है, क्लाइमेट भी अच्छा है, यहाँ का पीपल, यहाँ का लोग बहुत अच्छा है, हॉस्पिटलिटी भी वेरी नाइस,
रियली नाइस, वेरी गुड पीपल, वी रियली लव दिस प्लेस, रियली अ पैराडाइज.
The Kashmir Tourism Department is taking all measures to make this season more tourist-friendly with maximum facilities in place at all main and offbeat tourist destinations across Kashmir region. As part of short and long-term strategies, the Tourism Department is focusing on augmenting tourist infrastructure, local employment opportunities and destination grooming to build a stronger and more sustainable tourism season ahead. For Parikrama, Tariq Rathar, Akashwani News, Srinagar.
और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से. भारत के आयुष शेट्टी ने चीन में बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है. शेट्टी ने विश्व के चौथे नंबर के खिलाड़ी को हराकर बड़ा उलटफेर किया है.
Yes, and moving on to some business news, benchmark domestic equity indices surged over 1% today, supported by broad-based buying across sectors. The Sensex rose 919 points to close at 77,550, while the Nifty added 276 points to settle at 24,051.
और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन.
In today's episode, we commemorate anniversary of the Champaran Satyagraha, the first Satyagraha movement led by Gandhiji in India. It was a farmer's uprising who protested against having to grow indigo with barely any payment for it.
Mahatma Gandhi was persuaded by Rajkumar Shukla, an indigo cultivator from Champaran, to lead the movement against exploitation of farmers in the region. Gandhiji noticed that under the Tinkatya system, the Champaran tenant farmer was bound by law to plant 3 out of every 20 parts of his land with indigo for his landlord. Gandhiji reached Champaran in April 1917 and started implementing the similar methods of satyagraha that he had used in South Africa to organize mass uprisings by people to protest against injustice.
The local authorities did not find his visit welcome and they tried to dissuade Gandhiji from undertaking his inquiry. But Gandhiji determinedly began his work from the house of Babu Gorakh Prasad in Motihari, headquarters of the district. He was charged with violating Section 144 of CRPC and served summons. Gandhiji refused to leave Champaran and his popularity soared as the news of his prosecution broke.
On the 18th of April 1917, when Gandhiji appeared in Motihari court, he found 2,000 local people accompanying him. Gandhiji pleaded guilty and read out a statement.
As a law-abiding citizen, my first instinct would be, as it was, to obey the orders served on me. But I could not do so without doing violence to my sense of duty to those for whom I have come. I feel that I could not just now serve them only by remaining in their midst. I could not therefore voluntarily retire. Amid this conflict of duties, I could only throw the responsibility of removing me from them on the administration. I have disregarded the order served upon me not for want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience.
The Lieutenant Governor of Bihar ordered the withdrawal of case against Gandhiji. But this small step was a giant leap forward in the history of the freedom struggle. The Satyagraha heralded the advent of the Gandhian era in the Indian independence struggle.
Today, we remember the freedom fighter Chiravuri Yageshwar Chintamani. C.Y. Chintamani was born on the 10th of April 1880 at Vijayanagaram in Andhra Pradesh. He spent much of his public life in Prayagraj. Right from his young days, Chintamani was drawn to the moderate leaders of the Indian National Congress. He joined the Indian National Congress in 1898 and also became the editor of the newspaper Vizag Spectator. After his joining, the newspaper was renamed as Indian Herald.
However, the pinnacle of Chintamani's journalistic career came with his association with the newspaper The Leader. Published from Allahabad, The Leader emerged as a leading English nationalist newspaper in the United Province. The Leader was a joint venture of leading nationalists including Pandit Madan Mohan Malviya, Motilal Nehru, Sachidananda Sinha and Tej Bahadur Sapru. Chintamani was first brought in as a joint editor with Nagendranath Gupta. He soon became the sole editor of The Leader. The newspaper criticized the British Raj and its policies.
Chintamani left Congress in 1918 to form the Liberal Party with Surendranath Banerjee, Dinsho Vacha, Chimanlal Setalwad and Tej Bahadur Sapru. As a liberal, his preferred way to secure freedom was the use of constitutional means. Under the Government of India Act 1919, Chintamani served as the Education Minister of the United Province. Between 1927 and 1936, he was the leader of the opposition in the UP Legislative Council. In 1930, he was invited as a delegate to the first round table conference in London.
Chintamani's fiercely independent personality was reflected in his unwavering commitment to principles. Even after he was awarded the knighthood in 1939, his criticism of the British Raj did not cease. Chintamani served as the editor of the newspaper, The Leader, until his death on the 1st of July, 1941. Pays tribute to the nationalist leader, C. Y. Chintamani.
Yes, and we are also remembering T.S. Pillai, who passed away on this day in 1999, popularly known as Thakazhi after his place of birth, was an Indian novelist and short story writer of the Malayalam literature. He wrote over 30 novels and novellas and over 600 short stories, focusing on the lives of the oppressed classes. Known for his works such as Kayar and Chemmeen Prawns, Pillai was a recipient of the Padma Bhushan, the third highest Indian civilian award. He was also a recipient of the Gyanpith Award, India's highest literary award, in 1984 for the novel Kayar.
देश के प्रमुख उद्योगपति रहे घनश्याम दास बिरला की आज जयंती है. भारत के अग्रणी औद्योगिक समूह BKKM बिरला समूह के संस्थापक घनश्याम दास बिरला स्वाधीनता सेनानी भी रहे. गांधी जी के मित्र, सलाहकार, प्रशंसक और सहयोगी भी वो रहे. भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया. और कौमी एकता के तराने लिखने वाले उर्दू के सुप्रसिद्ध शायर और कवि नाजिश प्रतापगढ़ी की आज पुण्यतिथि है. नाजिश प्रतापगढ़ी को साहित्य का हिमालय भी कहा जाता है. उन्होंने अपने नाम के साथ बेल्हा का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन किया. उनके अब तक 12 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और उन्हें उर्दू साहित्य के सर्वश्रेष्ठ सम्मान गालिब से सम्मानित किया गया है. उनका खूबसूरत सा संदेश है जबान के लिए, जहां भी छांव घनी हो कयाम करते चलो, अदब जहां भी मिले एहतराम करते चलो, हर एक जबान को यारो सलाम करते चलो.
Khalil Gibran passed on this day. He was a Lebanese-American writer, poet and visual artist. He was also considered a philosopher, although he himself rejected the title. He is best known as the author of The Prophet, which was first published in the United States in 1923 and has since become one of the best-selling books of all time, having been translated into more than 100 languages.
Shastriya Gayika कोकिल कंठी किशोरी अमोनकर की आज जयंती है. किशोरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की प्रमुख गायिकाओं में से एक और जयपुर घराने की अग्रणी गायिका रही हैं.
And Shomu Mukherjee passed on this day in 2008. He was a prominent Indian film director, writer and producer, known for his work in Hindi cinema. He was a member of the influential Mukherjee Samarth film family and was the father of Bollywood superstar Kajol. And coming from a family of film pioneers, Mukherjee pursued a career that balanced directing, writing and producing. Let's listen in to a hit track from one of his movies.
मशहूर शास्त्रीय संगीतज्ञ गजल गायिका शांति हीरानंद चावला की आज पुण्यतिथि है. पद्मश्री से सम्मानित शांति ने बेगम अख्तर की गाई ठुमरी गजलें और दादरे इतनी खूबसूरती से गाए हैं कि इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है. और इसके साथ ही समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए जागृति और अभिषेक को, कार्यक्रम परिक्रमा यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।